श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंध अध्याय 32 श्लोक नंबर 26। ज्ञानम मात्र परब्रह्म परमात्म ईश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवान ने कई क्षते। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की विभिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा भगवान या पुरुष अवतार के रूप में विभिन्न प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, यहां दृश्य आदि भी शब्द महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी के अनुसार दृश्य का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक खोज है। जीव गोस्वामी जी के अनुसार विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत दार्शनिक अनुसंधान की अनेकानेक विधियों द्वारा यथा ज्ञान योग विधि से वही भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार ब्रह्म समझा जाता है। इसी प्रकार अष्टांग योग पद्धति से वही भगवान परमात्मा प्रतीत होता है, किंतु विशुद्ध कृष्ण चेतना अथवा ज्ञान की विशुद्ध स्थिति में जब कोई परम सत्ता को जानने का प्रयास करता है तो वही भगवान उसे परम पुरुष प्रतीत होता है। केवल ज्ञान के आधार पर अध्यात्म समझा जाता है। यहां पर प्रयुक्त परमात्मेश्वर पुमान ये सभी शब्द दिव्य हैं और वे परमात्मा को ही बताने वाले हैं। परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है, किंतु भगवान शब्द से सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, जो श्री यश शक्ति समदर्य ज्ञान तथा वैराग्य नामक सद ऐश्वर्य से पूर्ण है। वही विभिन्न प्रभुओं वैकुंठ में परमेश्वर हैं। परमात्मा ईश्वर और पुमान के विविध वर्णन यहां बताए हैं। परमेश्वर के अंततः विस्तार है। अंततः भगवान को जानने के लिए मनुष्य को भक्ति योग अपनाना होता है। ज्ञान योग या ध्यान योग संपन्न करके अंततः भक्ति योग पद तक पहुंचना होता है, तभी परमात्मा ईश्वर पुमान आदि को ठीक से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में संस्तुति की गई है कि मनुष्य चाहे भक्त हो या कर्मयोगी या मुक्ति का इच्छुक, यदि वह बुद्धिमान है तो उसे गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा जाना चाहिए। यही यह भी बताया गया है कि सकाम कर्मों से जो भी इच्छित फल प्राप्त होते हैं, चाहे वह उच्च लोक ज्ञान की इच्छा ही क्यों न हो, वह सब केवल भक्ति करने से प्राप्त होता है। चूंकि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, अतः वे अपने उपासक को इसमें से किसी का कभी भी वर दे सकते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा यहाँ सुंदर समझा रहे हैं, थोड़ा देर के लिए बंद कर लीजिए आप लोग, मुझे आपका बजा बज रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्पर्य में बड़ा सुंदर बात बता रहे हैं और वास्तव में विधि बता रहे हैं कि भगवान को ठीक से कैसे समझा जा सकता है। भगवान को ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति, जो भगवान के सत्ता के अंतर्गत ना हो। भगवान के सत्ता में ही सब जीते हैं। आस्तिक व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति भगवान को मानता है, उनके सत्ता को मानता है, उनके ऐश्वर्य को मानता है, विभिन्न प्रकार के शक्तियों के द्वारा भगवान को मानता है। किसी किसी से बात करेंगे तो कहता है कि हाँ कोई शक्ति है ऐसा, वो ठीक से समझा नहीं जा सकता ऐसे, कोई शक्ति है, कोई पावर है, ऐसे लोग बोलते हैं। कोई अष्टांग योग के द्वारा समझता है, कोई भगवान को निर्गुण निराकार के रूप में जानता है। बहुत ऐसे संत हैं जो भगवान को कहते हैं कि निर्गुण है, भगवान निराकार है, वो भी ठीक कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे इस बात को समझाते हैं, कहते हैं कि भगवान वास्तव में निर्गुण और निराकार ही हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को उनके भक्ति के द्वारा साकार भी हो सकता है और साकार भी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान बिना पैर के भी चल सकता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म कवन विधि नाना। एक जगह लिखते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी। भगवान बिना जिह्वा बिना मुंह के भी संसार में जितने रस हैं वो सबको भोग लेता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान के पास मुंह नहीं है, है, लेकिन बिना जिह्वा मुंह के भी वो खा सकता है, रस को भोग सकता है। भगवान कान से भी रस को भोग सकता है, नाक से भी भोग सकता है, अपने दृष्टिपात से भी भोग सकता है। वो आनंद रहित है, आनंद माने मुंह होता है, बिना मुख के भी भगवान बिना जिह्वा के टेस्ट के बिना भी संसार के सारे रस को भोग सकता है। वो समर्थ है परमात्मा। एक जगह लिखते हैं कि बिनु पग चलई, भगवान बिना पैर के भी चल सकता है, चलते हैं, बिना पैर के भी चल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई उनके पास पैर नहीं है। बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, कान के बिना भी सुन सकता है। भगवान के प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक कार्य कर लेती हैं, हमारी इंद्रियां एक एक ही कार्य करती है, लेकिन भगवान के प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक कार्य कर लेती है। ब्रह्म संहिता में गाते हैं ना आप लोग प्रतिदिन, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। भगवान के प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक कार्य कर लेती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत जिसके पास व्हीकल है, गाड़ी है, तो कभी गाड़ी से ना चल करके वो पैदल चल लेता है, तो देखने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि भाई आज पैदल चलता है, इसके पास गाड़ी नहीं है। नहीं, गाड़ी है लेकिन वो पैदल भी जा सकता है। तो भगवान के समझने के लिए अनेक प्रकार के, जीव गोस्वामी जिसमें लिखते हैं कि भगवान को इस प्रकार से समझा जा सकता है, कुछ निर्गुण के रूप में भगवान को समझते हैं अष्टांग योग इत्यादि से। निर्गुण का अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हम में गुण है अथवा प्रकृति के गुणों ने जो जीवों को बांध रखा है वो भगवान के ऊपर गुण काम नहीं करता, इसको निर्गुण कहते हैं। प्रकृति का जो तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है, प्रकृति भगवान के अपने गुणों से नहीं बांध सकती है। प्रकृति यानी माया अपने रज्जु से रस्सी से परमात्मा को नहीं बांध सकती, ये निर्गुण हुआ। निराकार का मतलब जो हम में आकार है वो भगवान के आकार नहीं है। ऐसा हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, भूमि रापो नलो वायु खम्भ, ये पांच तत्वों से बना है, और भगवान का जो शरीर है वो तीन तत्व है, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य। हमारा भी विग्रह है और भगवान का भी विग्रह है, लेकिन भगवान का जो विग्रह बना है वो आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य सचिदानंद रूपाय, भागवत जी में कहते हैं। भगवान का रूप है, विग्रह है, भगवान बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, उनका विग्रह है। भगवान सुंदर भी है, सब कुछ है उसमें, निर्गुण निराकार बुद्धि ना पहुंचने के कारण, भक्ति योग में प्रविष्ट न होने के कारण हम सब जीव मान लेते हैं। तो भगवान का जो विग्रह बना है सत्य चित आनंद से बना हुआ है। भगवान के शरीर को शरीर जो बना है, विग्रह जो है, उसमें एक जो तत्व है वो सत्य है, यानी भगवान में सत्य है। भगवान कभी असत्य नहीं बोलते हैं। कभी कभी हम लोगों को बात शास्त्रों की या संतों की बात नहीं समझ में आती है, इसलिए भगवान को पॉलिटिशियन में भी नाम रख देते हैं। गीता इत्यादि में कहते हैं भगवान बड़ा पॉलिटिशियन था वो, क्योंकि हमारी बुद्धि का, हमारी इंद्रियों का वहां तक अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं है, इसलिए भगवान को इस तरह से हम ऐसे हल्के शब्दों से बात करते हैं। भगवान के प्रति हल्का शब्द भी बोलना बहुत बड़ा अपराध है, ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान के शरीर बनने में वो तो बना हुआ पहले से था, उसमें एक सत्य भी है, यानी भगवान कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज भी कभी असत्य नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे। उनके सत्य बोलने के कारण महाराज युधिष्ठिर का जो रथ था वो पृथ्वी से 14 अंगुली ऊपर चलता था सत्य बोलने से। हम लोग भी सत्य बोल के देखें एक दिन, पूरा झूठ तो बोली जाता है, थोड़ा थोड़ा बोल ही देते हैं भक्त लोग, हम लोग भी बोल देते हैं। एक बार सत्य बोल करके देखिए आप जीवन में, एक हफ्ता देखिए आप में कितना तेज आता है, कितना बल, कितना आध्यात्मिक, कितनी दिव्यता आ जाती है उसमें। भगवान में एक सत्य है, भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। युधिष्ठिर महाराज को स्वर्गारोहण में जब उन लोगों ने कहा कि आपको एक मिनट के लिए, थोड़े देर के लिए नरक में जाना पड़ेगा, बोले वो क्यों? बोले कि आप एक बार झूठ बोले थे। अरे मैं कहां झूठ बोला था? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरे को याद नहीं है कि मैं झूठ बोला था कभी। वैसे ही संसार के लोगों को याद नहीं होता है कब सत्य बोलते हो, बोलते ही नहीं होंगे, बहुत लोग झूठ बोलते हैं। जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी जीवन जी सकता है, फिर भी झूठ बोलता है। भगवान में तत्व लगा है, सच्चिदानंद रूपाय सत्य। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं झूठ कब बोला? मैं झूठ नहीं बोला। अरे मैं झूठ बोलता ही नहीं कभी। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप एक बार झूठ बोले हैं। अब युधिष्ठिर महाराज बार बार कहते मैं झूठ नहीं बोला, वे लोग कहते नहीं आपने झूठ बोला, आज चलिए जाना पड़ेगा वहां, चलिए। अरे मैं झूठ बोला ही नहीं। भगवान भी प्रकट हो गए वहीं, बोले आप झूठ नहीं बोले थे? बोले कब झूठ बोला था? बोले कि वो महाभारत के युद्ध में हमने आपको कहा था कि अश्वस्थामा हत ही बोलना है आपको, आपने ये बात बोली थी? हाँ। बोले कि हाँ बोला था मैंने। क्या बोले थे? बोले कि अश्वस्थामा हत नरो या कुंजरो। भगवान ने कहा कि जो मैं बोला था यदि वो बोल देते तो झूठ था ही नहीं, अपने तरफ से नमक नमक मिर्चा लगाने की क्या जरूरत था आपको? नर था या मनुष्य था या हाथी था, आपसे कौन पूछने जा रहा था वहां पर? जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने बोला था, अस्वस्थामा हता, ये झूठ था ही नहीं। आप अपने तरफ से जोड़ दिए तो वही झूठ था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरे बाप अब जाओ, मेरे को जहां जाना वहां जाता। तो भगवान जो बात कहते हैं, भगवान ने जो कहा है गीता में, उस बात को मानना आपको बुद्धि समझ में नहीं लाती है, वो एक दूसरी बात है, लेकिन भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये भगवान में गुण है, ये जो गुण हम में नहीं है भगवान में। भगवान के बिगड़ा में एक सत्य है, एक चित है, प्रकाश आनंद। आप दो चार दस घंटा अकेले बैठे तो कहते हैं कि बोर हो गए यार, हम बैठ बैठ के चलो घूम के आते हैं। लेकिन भगवान अकेले भी ऐसे तो सहस्त्रों लक्ष्मियों के द्वारा सिव्य होते हैं प्रभु, लेकिन भगवान अकेले भी कभी बोर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा राम है, वो अपने आप में ही रमण करता है। वो आत्मा राम है, किसी की आवश्यकता नहीं है। आत्मा राम संतों को भी कहते हैं, आत्मा रामस्य मुनय निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वंती है तो किम भक्ति इथम भूत गुणो हरि। आत्मा राम संत भी होता है, सुखदेव बाबा इत्यादि आत्मा राम थे। जिस व्यक्ति को आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, शरीर से अलग हट जाओ, आत्मा राम है वो। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, कभी बोर नहीं होते हैं, कभी मन उदास नहीं होता है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, भगवान निरंतर आनंदमय रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी आपने देखा भगवान के दर्शन करते समय विग्रह में? दर्शन करते हैं ना आप लोग प्रतिदिन। हम अभी गए थे जगन्नाथपुरी, तो एक भक्त आए तो मैं बोला कि आपने दर्शन किया जगन्नाथ जी के? दर्शन किया? बोले हाँ दर्शन किया। मैंने दर्शन किया आपने, ठीक से दर्शन किया? बोले हाँ, मैं वहां विग्रह देखा। दर्शन में और विग्रह में अंतर है ना, उसी विग्रह में परमात्मा है, कलयुग में तो उसी में है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि भाई कहते हैं कि आज पुजारी ने बहुत बढ़िया ड्रेस सजाया है, फूल बड़ा बढ़िया लगाया है, बिंदियां बड़ा अच्छा लगाया है। वो जितने चीज सज रहे हैं भगवान से, भगवान के अंग में, वो चीज वस्तु भगवान को नहीं सजा रहा है, वो वस्तु भगवान से सज रहा है। भगवान को वस्तु, भगवान किसी वस्तु से नहीं सजते हैं। मैया यशोदा के गोद में तो कोई सजावट नहीं थी, बल्कि कपड़े भी नहीं था, नग्न घूमते थे भगवान, फिर बहुत सुंदर है भगवान। भगवान वस्तु से नहीं सजाए जाते हैं, भगवान से वस्तु सज जाता है। तो उस विग्रह में परमात्मा का दर्शन करना, उनके लीला का चिंतन करना, और यदि इस प्रकार से चिंतन दर्शन होता रहे बहुत देर से, भगवान को देखने से भगवान के जितने गुण हैं वो व्यक्ति में प्रवेश हो जाता है। जैसे संसार में कोई खराब वस्तु या खराब व्यक्ति का संग करो, या टीवी का संग करो 3 घंटे, तो 3 घंटे में उस पिक्चर का रंग चढ़ता है ना आदमी के ऊपर, संग देता है ना, अपना प्रभाव डालता है ना। आज कम से कम वस्त्र पहनने का जो प्रचार हुआ है वो टीवी का ही प्रचार तो है। यदि हम पिक्चर माने फोटो, फोटो देखने से यदि हम पर वो प्रभाव डाल सकता है, हम इसे बदल सकते हैं, तो यदि प्रभु का दर्शन करें तो उनके गुण आ सकता है हमें। क्या कहते हैं, भगवान को भी प्रभु कहते हैं, और वैष्णव लोगों को भी प्रभु कहते हैं, प्रभु जी। ये भक्ति सिद्धांत जी का नाम दिया हुआ है, प्रभु कहते थे अपने शिष्यों को, प्रभु। प्रभु मान तो भगवान होता है। तो भगवान हमेशा आनंदमय रहते हैं, खुश रहते हैं, सच्चिदानंद हमेशा आनंद में रहते हैं, सत चित एक भगवान में, चित मन प्रकाश ज्ञान, भगवान के जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, भगवान के जैसा कोई आनंद में नहीं रहता। प्रभुपाद जी इसमें भगवान के छह ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति योग को स्वीकार करता है, भगवान भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न हो सकते हैं। गीता में कहते हैं भक्त्या मामा भी जान आती, हम केवल भक्ति के द्वारा समझे जा सकते हैं, भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी नहीं। ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विशेष भांड, वैसे ज्ञान की निंदा नहीं है, उस ज्ञान की निंदा नहीं जो भगवान के पास पहुंचाता है, भगवान का दर्शन कराता है ज्ञान, जो भगवान को समझा देता है ज्ञान, उस ज्ञान की निंदा नहीं। लेकिन केवल सूखा संसारिक ज्ञान याद करके, संसारिक ज्ञान के आश्रित होकर के ऐसे समझ लेना भगवान को अलग से, उस ज्ञान की निंदा है। तो भगवान प्रभुपाद जी इसमें बड़ा सुंदर बात समझाए हुए हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान योग या ध्यान योग संपन्न करके अंततः भक्ति योग के पद तक पहुंचना होता है। ज्ञान भी हो या ध्यान भी हो या कोई यज्ञ हो, द्रव्य यज्ञ हो, ध्यान यज्ञ हो, योग यज्ञ हो, दान यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, जब तक आप हरिनाम यज्ञ में नहीं पहुंचते हैं, यानी भक्ति योग्य में नहीं पहुंचते हैं, तो भगवान का ठीक से परिचय नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक से परिचय नहीं जान पाएंगे आप। कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांग सपार्षदई यज्ञ संकीर्तन पराय, संकीर्तन रूपी यज्ञ करना है। और वो यज्ञ में किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं, किसी स्थान विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, किसी का संग भी ना हो तो कोई बात नहीं, वो यज्ञ अकेले कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 स्थान पवित्र है, अपवित्र है, आप ऑफिस में हो या घर में हो, किचन में हो या रूम में हो, रोड पर हो या गाड़ी में बैठे हो, इस यज्ञ को निरंतर चालू कर सकते हैं आप। इसको करने में कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, आप जहां भी बैठे हो अपना माला उठाइए, माला नहीं है तो जिह्वा है, जिह्वा से जहां भी हो हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा है, चैतन्य महाप्रभु इस यज्ञ को, इस हरिनाम संकीर्तन को यहां से नहीं बांटा, यहां से नहीं दिया, बल्कि इस हरिनाम संकीर्तन को महाप्रभु ने आते समय वहां से स्वयं गोलोक वृंदावन से लेकर के आए थे। इसको जो आप सबको, हम सबको जो सहज में प्राप्त हो गया, ये गोलोक वृंदावन से आया हुआ है। गोलोकेरा प्रेम धना, वो प्रेम धन क्या है भाई? हरिनाम संकीर्तन। वो प्रेम धन का नाम है नाम संकीर्तन, जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत जी के अंत में कहते हैं कि नाम संकीर्तन जो है वो लोग गोलोक वृंदावन से महाप्रभु लेकर के आए हैं। बताओ आप सबको पसंद है संसार में कि भाई हमें इंपोर्टेड चीज चाहिए, ब्रांडेड चीज चाहिए, और महाप्रभु ने कितना सुंदर ब्रांड लेकर के वहां से आए, ऐसा है ही नहीं। गोलोक वृंदावन से लेकर के आए, गोलोकेरा प्रेम धन, वो धन कैसा है, वो प्रेम कैसा है, क्या नाम दिया महाप्रभु ने? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन प्रेम धन है वो, और उस प्रेम धन को बांट करके महाप्रभु ने, उस भक्ति को दे करके महाप्रभु ने केवल मनुष्यों को ही नहीं दिया, बल्कि पशु पक्षी को भी दिया महाप्रभु ने, न जाने कितने महाप्रभु भी स्वयं भी इसको लेकर के, महाप्रभु प्रेम में तो विह्वल होते ही थे। एक देखो है भक्ति योग, एक है प्रेम योग, और प्रेम जब बिल्कुल उत्कट प्रेम हो जाता है परमात्मा से, तो एक भक्ति का नाम है उन्माद, जिसको आप चैतन्य चैतामृत में पढ़ते होंगे, महाप्रभु को कभी उन्माद आ जाता था, दिखता ही नहीं था कुछ, कहां जा रहे हैं, क्या पड़ा हुआ है, भगवान के वियोग में उन्माद आता था। प्रेम में तो आंसू इत्यादि बहता है, आंसू निकल जाता है, रोमांचित होता है, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, ये सब होता है, लेकिन भक्ति की जो अंतिम प्रकाष्ठा है वो महाप्रभु एकदम, देखते ना उनका फोटो वोटो कभी, एकदम ऐसे आंख खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाता है। तो इस भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा भगवान के विग्रह को, भगवान को ठीक से हम समझ सकते हैं। भगवान में वैसे छह ऐश्वर्य हैं, जिसमें छह ऐश्वर्य से भगवान, इसमें सब दाया है, ज्ञानम मात्र परब्रह्म परमात्मा ईश्वर पुमान, इसमें परमात्मा शब्द भी है, ईश्वर शब्द भी है, और भगवान शब्द भी है इस श्लोक में। तो भगवान शब्द जब आया तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि भगवान छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भगवान यहां पढ़ रहे थे ना हम, गंभीरता पूर्वक भक्ति के द्वारा भगवान समझे जा सकते हैं ठीक से। क्षमा कीजिएगा, हरे कृष्ण बोलते रहिए आप लोग, हरे कृष्ण ये सभी शब्द दिव्य हैं, राम राम हरे हरे। भगवान के प्रति जितने शब्द लगे हैं इसमें, वो शब्द दिव्य है और वे परमात्मा को ही बताते हैं शब्द। भगवान में जो ऐश्वर्य की बात करते हैं उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान में पहला जो ऐश्वर्य है वो श्री है। श्री माने धन भी होता है, श्री माने श्यामा जो भी हैं, भगवान के जैसा धनवान कोई नहीं है, भगवान के जैसा कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण धनवान नहीं है। ये सारा जगत में जो कुछ भी आप वस्तु देखते हैं वो सब भगवान का है, आपका शरीर भी भगवान का है, शरीर में जो तत्व लगे हैं वो भी भगवान का है। ईशा वास मिदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्जितम। दिव्यम माने वैकुंठ जगत के संपत्ति, भौमम माने पृथ्वी की संपत्ति, अंतरिक्षम जो आप नहीं देखते हो वो भी संपत्ति, वित्तम अच्युत निर्जितम ये भगवान के द्वारा सब स्थापित किया गया है। भागवत जी में कहते हैं भगवान के जैसा कोई लक्ष्मीवान नहीं है। भगवान का एक नाम लक्ष्मीवान भी है, वान माने रखने वाला, लक्ष्मी को रखने वाला। भगवान का एक नाम है श्रीधर, श्री माने लक्ष्मी, धर माने धारण करने वाला, जो लक्ष्मी को धारण करता है उसको श्रीधर कहते हैं, श्रीधर। भगवान में एक जो कला है, भगवान के जैसा कोई व्यक्ति में यश नहीं है, भगवान सबसे बड़ा यशस्वी है। श्रीमद् भगवत गीता के सामने नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी झुक जाता है, भगवान के यश को गाता है, उनके गुणों को गाता रहता है। भगवान जैसा कोई यशस्वी नहीं है, यशवान है भगवान, यश को पालन भी करते हैं। भगवान के जैसा कोई शक्तिशाली भी नहीं है। तीसरा, भगवान के जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। अपार शक्ति है भगवान में, अपार बल है भगवान में, जो आप बल को अंदाज नहीं लगा सकते हैं। भगवान में अपार शक्ति है, अपार बल है प्रभु में। आप देखिए भागवत जी में जब आप पढ़ते हैं बाल लीला में, तो मौसी पुतना जी आई थी जब भगवान को स्तन पान कराने, दूध पान कराने, कंस ने जब उनको भेजा और कंस जब चिंतित था तो कंस के धाय भी थी, पोषण भी की थी पुतना ने। पुतना ने बोली कि महाराज इतना चिंतित क्यों हो? बोले कि एक बालक मेरे चिंता का कारण है। पुतना ने बोले कि आपको पता नहीं, हमने जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई की है वो बालकों को मारने की ही पढ़ाई की है। बालक कैसे मारे जा सकते हो, मैंने उसको पढ़ाई, उसका डिग्री है मेरे पास, वो कौन सा बालक है बताओ? बोले गोकुल के तरफ है वो। अहो बकी स्थन काल कूटा, अपने स्थन में विष लगा करके गई। और पुतना जब भगवान के सामने गई तो भगवान ने नेत्र भी बंद किया था, नेत्र बंद करके भगवान ने मानो ये देख रहे हैं कि ये पुतना का कौन सा पुण्य है कि मेरे पास आई है। मेरे पास तो बड़े बड़े धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा ये सब आते हैं, इसके पास कौन सा पुण्य है? एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ध्यान लगा करके देख रहे हैं कि भगवान ने सोचा कि मैं तो बड़े बड़े पुण्यात्मा माताओं का दूध पिया हूं, कौशल्या मैया का दूध पिया हूं, जसोदा मैया का दूध पिया हूं, देवकी मैया का दूध पिया हूं, अब इसके पास कौन सा पुण्य है? एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान इसलिए नेत्र बंद कर दिए कि भगवान ने शंकर जी से कहा कि बाबा आपका विष पीने का अभ्यास है, आप विष पियो, मैं मत माखन खाऊंगा। उतने शक्तिशाली पुतना राक्षसी को भगवान जब उसको मारना हुआ, मुक्ति देना हुआ, तो भगवान तो उस समय संत लोग कहते हैं कि 6-7 दिन के थे। और उतने बड़े शक्तिशाली पुतना को मारने के लिए भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं किया, अपने जिह्वा से तालू से दबा दिया और प्राण निकल गया उसका। भगवान के जैसा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। जितने राक्षस आए भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र को मार दिया। जब भगवान 7 वर्ष के हुए तो गिरिराज जी को उठा लिया था, और कितना दिन? 7 दिन 7 रात ना, ठीक बोल रहे हैं ना आप सब? और कौन से हाथ में? बाएं हाथ में, बाएं हाथ के छोटी वाली अंगुली पर। और हम सबको यदि 1 किलो दे दिया जाए कि भाई अंगुली पर लेकर के रहो 2 घंटा, तो रखेंगे हम लोग? कितने शक्तिशाली हैं भगवान। अरे भाई 1 आध किलो दो नहीं, कह दो कि भाई 10 बार महामंत्र बोलना और पूरा हाथ सीधा करके, तो 10 बार ऐसे ऐसे करेंगे हम। फिर भी आजकल के लोग कहते हैं भगवान से कम थोड़ी है, 360 भगवान तो हमने गिना है जो बन चुके हैं सब लोग। भगवान के जैसा शक्ति किसी में नहीं है, भगवान बहुत शक्तिशाली हैं। भगवान में एक जो कला है, ऐश्वर्य है, भगवान में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है भगवान में। भगवान के जैसा ब्यूटी किसी में नहीं है, सुंदरता किसी में नहीं है। भगवान बहुत सुंदर हैं, सर्वांग सुंदर है। संसार के व्यक्ति को किसी का मुंह सुंदर है तो उसका पैर सुंदर नहीं होगा, पैर सुंदर है तो हाथ की अंगुली टेढ़ी है, मुंह सुंदर होगा तो नाक लंबी होगी, आंख अच्छा होगा तो कान ठीक नहीं होगा। लेकिन भगवान सर्वांग सुंदर हैं, उनके जैसा सौंदर्य किसी में नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शतशब भ्रम सिव्यमानम, हजारों लक्ष्मियों के द्वारा सिव्य होते हैं प्रभु। और कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, काम जो है वो संसार में जितने जीव हैं वो सबसे सुंदर है, वो सबसे सुंदर है, वो काम सबको आकर्षित कर लेता है, सबको मोहित कर लेता है, सबको खींच लेता है काम अपने तरफ। लेकिन हमारे मदन मोहन जी के पास जाता है तो भी शर्मा जाता है कि आपके साथ तो हमारा कोई तुलना नहीं है। काम सबको आकर्षित करता है, मोह लेता है सबको, लेकिन मदन मोहन जी के पास जब जाता है तो काम भी लज्जित हो जाता है, कहता है कि आपके जैसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे भगवान में सुंदरता है। भगवान में एक ऐश्वर्य है ज्ञान, भगवान के जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं है। संसार में कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो खूब रोता है, अपने पूर्व जन्म के गतिविधियों को, अपने कर्मों को याद करके खूब रोता है वो, और उसके रोने की आवाज सुन करके हम खूब ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, बधाइयां गाते हैं, शहनाइयां बजती है, बधाई बांटी जाती है। बालक रो रहा है, हम रोते हुए आए, बालक रो रहा है और हम खूब थाली बजाते हैं, बताओ। आज जब वो शांत हो जाता है अंत में तो फिर हम रोने लगते हैं, जब चरपाई पर जाता है खटिया पर काट की घोड़ी पर तो फिर हम रोते हैं उसके लिए। लेकिन हमारा प्रभु जब आया, हमारा प्रभु का जब अवतार हुआ भक्तों के पुकार से, तो भगवान रोए नहीं, कई एक जन्मों की कथा सुनाने लगे। कौशल्या जी को देखिए, कौशल्या जी के समक्ष प्रभु ने कही कथा सुहाई मात बुझाई, मात बुझाई, हे मैया बैठो सुनो मेरी बात, बुझो क्या मैं कहना जा रहा हूं। मात बुझाई, भूषण बन माला नयन विशाला, भगवान का अवतार जब होता है या हुआ तो गले में भूषण था, आभूषित शरीर था, आंखें बड़ी बड़ी थी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, सागर के जल को जैसे आप पता नहीं लगा सकते हो वैसे परमात्मा के सुंदरता को पता नहीं लगा सकते हो, इतने सुंदर हैं भगवान। शोभा सिंधु खरारी, मैया कौशल्या जी घबरा गई, बोले कि मैं तो पुत्र के रूप में मांगी थी, ये तो जगत के पति के रूप में आया हुआ है। और मैया ने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ के कहा, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, हे अनंत हे परमात्मा तुम्हारी स्तुति मैं कैसे करूं। भगवान ने सोचा कि लगता गलती हो गई, मैया ने हाथ जोड़ दिया, बेटे के सामने माता हाथ जोड़े, क्या गलती हुआ। तो मैया ने कही कि मैं तो पुत्र के रूप में मांगी थी, तुम तो पति के रूप में आए हो। भगवान बात कर रहे हैं, अवतार हुआ बातचीत कर रहे हैं, कितने जन्मों की बात कर रहे हैं। जब तुम देवकी वसुदेव के रूप में, देवकी के रूप में आई थी तो मैं कृष्ण बन के आया, बामन के रूप में अदिति के रूप में जब हुआ तो उस बामन के रूप में आया, न जाने कितने जन्मों की बात प्रभु ने बता दिया। इसके बाद में अब तुम कौशल्या बनी हो तो अब तुम्हारे पुत्र बन करके आया हूं। कौशल्या जी ने कहा कि अरे हम इसलिए तुमको थोड़ी बुलाई थी, कोई भी माता जब जन्म देती है बालक को तो बालक के बाल्य स्वरूप का आनंद लेना उसका तो परम कर्तव्य है और उसका अधिकार है, तुम तो पति के रूप में आए हो। बोले क्या गलती हुआ, बोले कि चार भुजा में कोई बच्चा जन्म लेता है क्या। भगवान ने कहा चलो दो भुजा हटा देता हूं, भगवान ने दो भुजा हटा दिया। बोले अब ठीक है ना, अब ठीक लग रहा है आपको। बोले हाँ। कोई बालक गहना पहन के आता है भूषित करके, भगवान ने गहने भी हटा दिए। अरे बड़ी बड़ी तुम्हारी आंख, भगवान ने आंख भी छोटा कर लिया, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। अनुवनिया महतो महिया, छोटे से छोटे बन सकते हैं, बड़े से बड़े बन सकते हैं। अब मैया ठीक है आपको प्रसन्नता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आपको आ रही है ना। अरे बोले कि दिक्कत, इतना बालक कोई जन्म लेता है क्या, भगवान छोटे हो गए क्या करूं। बोले कि हमारे गोद में आ जाओ, गोद में बैठ गए भगवान, ये भक्ति के द्वारा गोद में बैठ गए भगवान। बोले अब ठीक है ना, बोले ठीक कहां से है, छोटे तो हो गए लेकिन बोलते हो बूढ़े के जैसा, क्या करूं, रो ना। तो कीजे सुशील लीला अति प्रिय शीला, भगवान ने एक शिशु के जैसा, बालक के जैसा, फिर रोने लगे बाद में। तो भगवान तो उनके जैसा ज्ञानी कौन है। सबसे गीता को भगवान ने 40-30 मिनट के अंदर में अर्जुन को गीता पूरी सुना दिया था और गीता समझ लिया था अर्जुन ने। तो भगवान के जैसा कोई ज्ञान भी नहीं है किसी के पास, और हमारे प्रभु के जैसा किसी में वैराग्य नहीं है। इतने वैरागी हैं कि ये सारा जगत प्रभु का, सारी संपत्ति उन्हीं की है, सारे जगत के लोग भी उन्हीं के संतान के रूप में हैं। 56 करोड़ जदुवंशी भी उन्हीं के थे, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से उपाय करके सबको ले गए। कभी भी आंसू नहीं बही, कभी भी रोए नहीं भगवान। कभी देखा आप लोगों ने कहीं कहीं पढ़े हो शब्दों के द्वारा, शब्द ब्रह्म में कहीं पढ़े हो या विग्रह में कहीं देखते हो कि भगवान कहीं आंसू बहा रहे हो कि हमारा 56 करोड़ जदुवंशियों का नाश हो गया, थोड़ा बैठ के रो लूं। आराम से बैठे थे वो, बैरागी है, अनासक्त है भगवान, डिटैच है। जैसे आप कभी कभी नदी के किनारे में, नदी में जाकर के स्नान करते हो और साथ में बालू का बढ़िया बढ़िया घर बनाते हो, जब आपका खेल खत्म हो जाता है तो पैरों से मार के गिरा करके चल देते हो। उसी प्रकार भगवान का सृष्टि है ये। भगवान भी इस संसार सृष्टि में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बनाता है, जब इसको बिगाड़ना होता है तो उसको मोह नहीं होता है, निकल जाता है। इतना सुंदर वैराग्य है भगवान के पास। तो ये सब चीज यदि आपके आपको अपने अंदर भी लाना है तो भक्ति योग के द्वारा, भगवान के दर्शन के द्वारा, उनके चिंतन के द्वारा, भगवान के चिंतन करोगे तो वैरागी बन जाओगे, भगवान के दर्शन करोगे तो भगवान के बहुत से दर्शन से उनके गुण आ जाएगा, दर्शन से आप में पवित्रता आ जाएगी, दर्शन पवित्र ही ल। तो संतों को भी यदि आप दर्शन करेंगे तो उनका गुण बहुत सा चला जाता है। आजकल तो मैं दूसरा चीज देखता हूं कि कोई देखता है कि एक वैष्णव आ रहा है तो थोड़ा रास्ता काट के चल देता है, दर्शन नहीं करता है, रास्ता ठीक नहीं चलता भाई, उससे इधर नहीं इधर चलो। संत वैष्णव को भगवान के दर्शन करने से ही जीव पवित्र हो जाता है, सब गुण आ जाता है उसमें। तो प्रभुपाद जी यहां भगवान को समझने के लिए ठीक से बड़ा सुंदर उपाय बताया कि भक्ति योग के द्वारा भगवान को ठीक से समझा जा सकता है, और ठीक से समझना चाहिए भगवान को, और ठीक ठीक से ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप ठीक से समझ सकते हो भगवान को। ज्ञान हो, ठीक से वैराग्य हो, तब भगवान को ठीक से समझ सकते हैं आप लोग। धन्यवाद आप सबका। 9 बज गया, कोई प्रश्न है एक आध आप लोगों का, भूख लगी हो तो आप जा सकते हैं। धन्यवाद आप सबका, बहुत शांति से सुने आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भगवान सुखी रखें सबको।